नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। श्रोताओ, इस पुस्तक में हम देखेंगे कि 40 वर्षों के बाद इसराइली लोग कनान देश में प्रवेश करने वाले हैं, और साथ ही ये देखेंगे श्रोताओ कि मूसा उन्हें परमेश्वर के द्वारा किए गए कार्यों को याद दिलाता है और उन्हें प्रोत्साहित करता है कि वे परमेश्वर के द्वारा दी गई व्यवस्था का पालन करें। और इन सबसे बढ़कर मूसा चाहता था कि इसराइली लोग ये जान सके कि परमेश्वर उनसे कितना प्रेम करता है और इस प्रेम का बदला वो परमेश्वर को कैसे दे। तो आइए श्रोताओ, अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले आइए सुनते हैं एक मधुर गीत।
मेरा मसीह प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, इससे पहले कि आज हम अपने नए पुस्तक को आरंभ करें, आइए हम सब परमेश्वर की निकटता में आए और उससे आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे अत्यंत दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी महान प्रेम और दया के लिए, आपकी करुणा के लिए जिसे आप हमारे जीवन में प्रतिदिन देते हैं। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम में से हर एक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ की परिपूर्णता दीजिए, ताकि जब हम आपके जीवित वचन को सुने तो निश्चित रूप से आपका वचन हमारे हृदयों से बोलने और बातचीत करने पाए। मूसा की इस पांचवी पुस्तक के द्वारा से हम सबों को नई नई बातें सिखाएं, ताकि हमारे जीवन उस वचन के अनुसार चलने पाए। इस समय फिर से एक बार हमारे उन भाई बहनों को याद करते हैं जो बीमार हैं, दुखी हैं, पीड़ित अवस्था में हैं। प्रभु, आप उनके भी सुधि लें, उनकी भी सहायता करें, उनसे भी बोले और बातचीत करें, ताकि वे भी आपके वचन के द्वारा अपने जीवन में आशीष को देखने पाएं। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं और मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि यह पंच ग्रंथ की अंतिम पुस्तक है। बाइबल की पहली पांच पुस्तकें जिसे मूसा ने लिखी थी, इन्हें हम पंच ग्रंथ कहते हैं और कुछ लोग इसे पंचतंत्र भी कहते हैं। ये पांच पुस्तकें हैं उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। आज हम सर्वप्रथम इसके शीर्षक को देखेंगे। व्यवस्था विवरण वास्तव में यूनानी शब्द ड्यूटेरोनोमी का हिंदी रूपांतरण है। ड्यूटेरो का अर्थ है दो और नोमियो का अर्थ है व्यवस्था, अतः इसका मूल अनुवाद है दूसरी व्यवस्था, जिसका अभिप्राय है व्यवस्था का पुनरावलोकन। इसी पुनरावलोकन को दूसरे शब्दों में विवरण कहा गया है। इस प्रकार हमारे पास यह शीर्षक आया है व्यवस्था विवरण, परंतु यह यथार्थ में उस व्यवस्था का दोहराया जाना मात्र ही नहीं है, पुनरावृत्ति के नियम का यह एक उदाहरण है। जैसा कि हम धर्मशास्त्र में देख चुके हैं, परमेश्वर के आत्मा की रीति है कि वह किसी बात को पहले रूप रेखा में कहता है, फिर वह उसके किसी विशेष भाग पर बल देकर दोहराता है। अतः आप यह न सोचें कि व्यवस्था विवरण मूसा की दी गई परमेश्वर की व्यवस्था को निरुद्देश्य दोहराना है। मेरे मित्रों, व्यवस्था विवरण के चार इब्रानी शीर्षक हैं। पहला, देबारिम अर्थात शब्द या वचन यह है, जो आरंभिक अभिव्यक्ति पर आधारित है। जो बातें मूसा ने सारे इसराइलों से कही वे ये हैं। दूसरा, कित अर्थात व्यवस्था का पांचवा भाग, और तीसरा, फटकार की पुस्तक, और तब चौथा, व्यवस्था की पुनरावृत्ति। आइए अब हम इस पुस्तक की विषय को देखें। व्यवस्था विवरण का विषय आपको अचंभे में डाल देगा। इसका महान विषय है प्रेम और आज्ञा पालन। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि परमेश्वर का प्रेम बाइबल में इतना पहले भी था। प्रेम शब्द 22 बार आया है। यीशु का यह कहना, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो, कोई नई बात नहीं है। व्यवस्था विवरण की शिक्षा है कि मनुष्य की आज्ञाकारिता परमेश्वर के प्रेम की प्रतिक्रिया है। व्यवस्था विवरण सुसमाचार तो नहीं है, परंतु सुसमाचार का महान सिद्धांत इसमें पाया जाता है। मेरे मित्रों, हमें एक बात भली भांति जान लेना है कि व्यवस्था भली है। यद्यपि मैं बल देकर कहता हूँ और फिर कहता हूँ कि परमेश्वर हमें व्यवस्था द्वारा मोक्ष प्रदान नहीं करता है, परंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि व्यवस्था भली नहीं है। निसंदेह व्यवस्था भली है। क्या आप जानते हैं कि समस्या की जड़ कहाँ है? मेरे मित्रों, समस्या आपके और मेरे साथ है। इस कारण परमेश्वर को हमें अनुग्रह द्वारा बचाना पड़ा। आइए हम इस पुस्तक के लेखक के विषय में देखें। व्यवस्था विवरण मूसा द्वारा लिखी गई है। मूसा एक ऐसा पुरुष था जो परमेश्वर को जानता था। वह परमेश्वर से आमने सामने बातें करता था। भजन संहिता 103 पद 7 में भजनकार कहता है, उसने मूसा को अपनी गति और इसराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। मेरे मित्रों, इसराइल के वंशजों ने परमेश्वर के काम को देखे परंतु उसे जाना नहीं। मूसा उसकी गति जानता था। व्यवस्था विवरण उसके अंतरंग ज्ञान तथा जंगल के 40 वर्ष के अनुभव का परिणाम था। मूसा की मृत्यु का वृतांत जो अध्याय 34 के पद 5 से 12 में व्यक्त है, वह संभवतः यहोशू द्वारा लिखा गया था और यहोशू की पुस्तक का ही एक भाग है। यहोशू की पुस्तक जब लिखी जा चुकी थी तब वह पंच ग्रंथ के कुंडली ग्रंथ में ही जोड़ दी गई थी। इस प्रकार वह श्रेष्ठ ग्रंथ हो गया। आलोचक व्यवस्था विवरण का लेखक मूसा की पुस्तक या मूसा की नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मूसा के युग में लिपि नहीं थी। परंतु यह विचार निराधार सिद्ध हो गया है, क्योंकि आज यह स्पष्ट है कि लिपि मूसा से भी बहुत पुरानी है। आलोचकों का यह भी कहना है कि इस पुस्तक का उद्देश्य यरूशलेम के याजकों को सराहना है, परंतु न तो याजकीय सेवा और न ही यरूशलेम का इस पुस्तक में कहीं उल्लेख है। मित्रों, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि ग्राफ वेलहाउसन मत, जो वर्षों पूर्व जर्मनी के विश्वविद्यालयों से उभरा था, आज भी कई देशों के सेमिनरियों में सिखाया जाता है। आइए अब हम इसके उद्देश्य को देखें। व्यवस्था विवरण की पुस्तक इसराइल की नई पीढ़ी को दी गई थी, क्योंकि वे सीनै पर्वत के अनुभवों से अनभिज्ञ थे। यह नई पीढ़ी यर्दन के पूर्वी तट पर पहुंच चुकी थी और मूसा के उपदेशों के एक महीना बाद उन्होंने प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश किया। मिस्र देश से निकली पहली पीढ़ी तो अपने अविश्वास और परमेश्वर से विद्रोह के कारण जंगल में ही समाप्त हो गई, अर्थात मर गई थी। उनकी हड्डियां रेगिस्तान में सूख रही थी। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन किया था, जो अपराध आचरण था। वे परमेश्वर में विश्वास करने से चूक गए थे। यह अकर्तव्य कर्म का पाप था। अविश्वास पाप है। व्यवस्था देह के कारण दुर्बल थी। देह तब असिद्ध थी और आज भी असिद्ध है। यही कारण है कि परमेश्वर के पास हमें उद्धार दिलाने का सर्वथा भिन्न आधार है। मेरे मित्रों, यह नई पीढ़ी अब वयस्क हो चुकी थी और उसे जंगल के 38 वर्षों के प्रकाश में व्यवस्था की व्याख्या की आवश्यकता थी। अनेक नई समस्याएं इस बीच खड़ी हो चुकी थी, जिनके विषय व्यवस्था स्पष्ट नहीं थी। दूसरी ओर परमेश्वर का यह आदेश था कि वे अपनी संतान को व्यवस्था की शिक्षा सदैव दिया करें। क्या आज के परिवार में यह एक बहुत बड़ी कमी नहीं है? आज हम स्कूल और कलीसिया की चूक के विषय आवाज उठाते हैं, जिसका मैं समर्थक हूँ, परंतु समस्या का मूल परिवार में है, जहाँ ईश्वरीय शिक्षा का उदय होता है। मेरे मित्रों, मूसा इस नई पीढ़ी को परमेश्वर के अंतिम निर्देश देता है। वह जंगल के अनुभवों को दोहराता है और व्यवस्था की विशेष बातों पर बल देता है तथा प्रतिज्ञा के देश के संबंध में उसके साथ बांधी गई वाचा के प्रकाश में उनकी भावी दिशा को प्रकट करता है। हम इस पुस्तक में देखेंगे कि मूसा की व्यवस्था इसराइल की प्रजा ही नहीं, इसराइल की भूमि के लिए भी थी। अंत में मूसा उन्हें एक नया गीत सिखाता है। वह 12 गोत्रों को आशीर्वाद देता है और उसके उपरांत इस दुनिया से कूच करने की तैयारी करता है। मूसा का शोक गीत इस पुस्तक का उपसंहार है। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसराइल की पहली पीढ़ी जब प्रतिज्ञा के देश के निकट आ गई थी, तब उन्होंने उस देश में भेदिए भेजे और भेदियों द्वारा लाए गए समाचार से डरकर वे मूसा पर, यह दूसरे शब्दों में कहें कि परमेश्वर पर, कुड़कुड़ाने लगे कि वह उनकी संतान के विनाश हेतु उन्हें वहां लाया है। इस कारण परमेश्वर ने कुपित होकर शपथ खाई कि वे वहां प्रवेश नहीं कर पाएंगे और वही पीढ़ी जिसकी उन्हें चिंता है वह प्रवेश करेगी। मूसा इसी घटना का सविस्तार से वर्णन कर रहा है। वह पीढ़ी तो पूरी समाप्त हो गई, केवल यहोशू और कालेब ही जीवित थे। अब वह इस नई पीढ़ी को प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने के लिए तैयार कर रहा है। मूसा उन्हें उनके पितरों की भूल चूक बता रहा था कि वे उनके समान चूक ना करें, अपितु उनके अनुभव से लाभ उठाएं। आइए हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक 1 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, जो बातें मूसा ने यर्दन के पार जंगल में, अर्थात सूप के सामने के अराबा में और पारान और तोपेल के बीच और लाबान हसेरोत और दीजाहाप में सारे इसराइलों से कही वे ये हैं। मुझे मेरे मित्र ने बताया कि उसने नीबो पर्वत पर खड़े होकर उसके फोटो उतारे हैं। वहां से यरूशलेम नगर का दृश्य साफ दिखाई देता है। उसने यह भी कहा कि मैंने जो दृश्य देखा वह प्रतिज्ञा के देश का सा तो दिख नहीं रहा था, पूरा का पूरा उजाड़ दिखाई दे रहा था, जो उस देश पर सैकड़ों वर्षों का कुप्रभाव था। मेरे विचार में मूसा जब उस देश को देख रहा था तब वहां हरियाली एवं उत्पादक भूमि दिखाई दे रही होगी, आज वह रेगिस्तान में बदल गई है। हम व्यवस्था विवरण एक अध्याय उसके दो पद में आगे पढ़ते हैं, होरेब से कादेश बरने तक सेइर पहाड़ का मार्ग 11 दिन का है। ध्यान दीजिए, सीनै पर्वत ही होरेब पर्वत है। होरेब से कादेश बरने की यात्रा कुल 11 दिनों की ही थी। कादेश बरने प्रतिज्ञा के देश का प्रवेश स्थान था, परंतु इसराइल को वहां तक पहुंचने में 38 वर्ष लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। उनका जो सीधा मार्ग था जंगल में भटकने में बदल गया। वे अनजान या कहें तीर्थ यात्री बन गए थे। वे उस भयानक बृहद जंगल में भटकने लगे। मेरे मित्रों, हम भी किसी बात को सीखने में बहुत समय लगाते हैं। हम अपने आप को कम आत्मिक बुद्धि के मनुष्य कह सकते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर को हम में से कुछ का उद्धार करने के लिए स्कूल को ध्वंस करना होगा। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक एक अध्याय उसके तीन पद में आगे पढ़ते हैं, 40 वर्ष के 11वें महीने के पहले दिन को जो कुछ यहोवा ने मूसा को इसराइलियों से कहने की आज्ञा दी थी उसके अनुसार मूसा उनसे ये बातें कहने लगा। ध्यान दीजिए, अब उनके भटकने का समय पूरा हो गया था और इसलिए मूसा अपना पहला भाषण देता है। उसके ये वचन पहले मौखिक थे और बाद में मूसा ने इन्हें लिख दिया। आलोचक इसमें गलती निकालते हैं, उनके अनुसार मूसा के समय में लिपि नहीं थी, अतः ये वृतांत मूसा द्वारा लिखा हुआ नहीं है। परंतु अब यह सिद्ध हो गया है कि लिपि मूसा के युग से प्राचीन है। मूसा परमेश्वर का वक्ता था और उसने यह स्पष्ट कहा भी था कि ये वचन उसे परमेश्वर ने दिए थे कि इसराइल तक पहुंचाए। कादेश बरने में इसराइल की चूक। उनके इतिहास को दोहराते हुए और उनकी यात्रा का वर्णन करते हुए मूसा अपनी एक बड़ी भूल का उल्लेख करता है। हम व्यवस्था विवरण के पुस्तक एक अध्याय उसके 9, 12 और 13 पद को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, फिर उसी समय मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारा भार अकेला नहीं सह सकता। 12 और 13 पद, परंतु तुम्हारे जंजाल और भार और झगड़े रगड़े को मैं अकेला कहाँ तक सह सकता हूँ। सो तुम अपने एक एक गोत्र में से बुद्धिमान और समझदार और प्रसिद्ध पुरुष चुन लो और मैं उन्हें तुम पर मुखिया ठहराऊंगा। यह वृतांत निर्गमन की पुस्तक 18 अध्याय में भी पाया जाता है। मूसा कुपित बोझ से दबा और खिन्न था। उसने सोचा कि इसराइल का बोझ उठाने के लिए वह अकेला है। इस कारण परमेश्वर ने उसे प्रबंधक प्राचीनों को चुनने की अनुमति दे दी और उसने 70 प्राचीन नियुक्त किए। यही समिति आगे चलकर महासभा कहलाई, जिसने वर्षों पश्चात मसीह यीशु को मृत्युदंड दिया। अब हम आगे देखते हैं कि मूसा अपनी निराशा में यह देखने से चूक गया था कि इसराइल का वास्तविक अगुआ और बोझ उठाने वाला तो परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर द्वारा नियुक्त अगुआ था और उसे किसी समिति की आवश्यकता नहीं थी। मूसा से बहुत बड़ी भूल हो गई थी जिसका अंगीकार वह यहाँ कर रहा है। मित्रों, मनुष्य प्रायः अपनी गलती नहीं मानता है, परंतु मूसा ने अपनी गलती मान ली। मूसा ने स्वीकार किया कि प्राचीनों की समिति देखने और सुनने में अच्छी थी, परंतु वह एक सफल व्यवस्था नहीं थी। उसके कारण अनेक परेशानियां उठ खड़ी हुई थी। कलिसिया में भी ऐसा ही होता है और मेरे विचार में कलिसिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ऐसी समिति जो पादरी या पास्टर की राय न माने। ऐसी स्थिति में या तो पुरोहित या पास्टर को त्यागपत्र देना होगा या समिति को भंग करना होगा। मेरे मित्रों, यदि परमेश्वर का दास, पास्टर, पुरोहित परमेश्वर के वचन पर दृढ़ रहे और वचन ही का प्रचार करे, तो समिति का दायित्व है कि वह उसे सहयोग दे। यदि उन्हें पुरोहित की जीवन शैली स्वीकार्य नहीं है तो उन्हें बाहर हो जाना चाहिए। परंतु त्रासदी तो यह है कि वे जमे रहते हैं और कलीसिया का विभाजन करके पुरोहित को क्रूस पर चढ़ा देते हैं। क्या आप उनके जंगल के अनुभवों के बारे में मूसा की राय सुनना चाहते हैं? व्यवस्था विवरण की पुस्तक 1 अध्याय उसके 19 पद में इस प्रकार लिखा है, और हम होरेब से कूच करके अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार उस सारे बड़े और भयानक जंगल में होकर चले जिसे तुमने एमोरियों के पहाड़ी देश के मार्ग में देखा, और हम कादेश बरने तक आए। ध्यान दीजिए कि मैं मूसा की बात पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि वह वहां था। वह जंगल बड़ा भयानक था। जंगल की पद यात्रा फूलों की सेज पर चलना नहीं था। दूसरी बड़ी भूल जिसका उल्लेख मूसा करता है वह थी कादेश भरने पर लिया गया गलत निर्णय। यहाँ फिर समिति के कारण उत्पन्न समस्या आती है। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 1 अध्याय उसके 20 से 23 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, वहां मैंने तुमसे कहा, तुम एमोरियों के पहाड़ी देश तक आ गए हो जिसको हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। देखो, उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है, इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो और उसे अपने अधिकार में ले लो। ना तो तुम डरो और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, और तुम सब मेरे पास आकर कहने लगे, हम अपने आगे पुरुषों को ही भेज देंगे जो उस देश का पता लगाकर हमको यह संदेश दे कि कौन सा मार्ग होकर चलना होगा और किस किस नगर में प्रवेश करना पड़ेगा। इस बात से प्रसन्न होकर मैंने तुम में से 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक पुरुष चुन लिया। मेरे मित्रों, यहाँ फिर समिति का विषय आया कि एक समिति बनाई जाए जो प्रतिज्ञा के देश का भेद लेने जाए, जबकि परमेश्वर ने तो पहले ही से वहां का पूरा निरीक्षण कर लिया था। इसी कारण परमेश्वर ने कहा था कि वह देश दूध और शहद की बहुतायत का देश है। निसंदेह उस देश में भीमकाय मनुष्य थे, परंतु परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि वह उन्हें संभाल लेगा। मेरे मित्रों, उन्हें एक समिति चाहिए थी। मूसा को भी एक समिति चाहिए थी, और देख लीजिए कि समिति के कारण क्या हुआ। उन्हें भयानक जंगल में भटकना पड़ा। उनकी मुख्य समस्या थी अविश्वास। परमेश्वर ने उनसे कहा था कि वह एक उत्तम भूमि है। भेदियों ने भी यही समाचार सुनाया था, परंतु साथ ही उन्होंने चिंता भी व्यक्त की थी कि वहां भीमकाय मनुष्य निवास करते हैं। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि वहां के निवासियों को वह इसराइल के अधीन कर देगा, परंतु इसराइल ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। मेरे मित्रों, आज प्रतीकात्मक रूप में या रूप से विश्वासी भी जीवन में भीमकाय परिस्थितियों का सामना करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर के संतान होने के कारण आप विकराल परिस्थितियों में से गुजर रहे हैं या घिरे होते हैं। आप मेरा विश्वास करें कि आप एक बौने होकर दानव का सामना नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वह दानवों को हमारे अधीन कर देगा। यह जाना एक अद्भुत बात है, और हमारी बाहरी परिस्थितियां वास्तव में समस्या नहीं बनती हैं। समस्या तो हमारी या हमारे भीतर की दशा है, हमारे मन का अविश्वास है। मेरे मित्रों, यही हमारी समस्या का कारण भी है। परमेश्वर ने स्पष्ट कहा कि वह संपूर्ण पीढ़ी जो कादेश बरने से अविश्वास में लौट रही है जंगल में समाप्त होगी, अर्थात मर जाएगी। केवल 2 पुरुष कालेब और यहोशू प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करेंगे। आज मेरे जीवन में और आपके जीवन में भी ऐसे ही कई अविश्वास के गुण हैं जिसके द्वारा से हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पर होते हैं लेकिन हम पहुंच नहीं पाते हैं। मेरे मित्रों, आज मुझे और आपको भी उन इसराइलियों की तरह उनके जीवन की तरह झांक कर देखने की आवश्यकता है कि हम किस ग्रुप में से हैं, अर्थात किस समूह या किस समिति में से हैं। क्या हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं जैसा कालेब और यहोशू ने किया, या हम उन लोगों के जैसे हैं जिन्होंने विश्वास नहीं किया और सीमा तक आए और वहां से वे उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर पाए। हो सकता है कि आपके जीवन में भी बहुत सारे अविश्वास हैं, बहुत सारे ऐसी रुकावटें हैं जिसे आज परमेश्वर आपके जीवन से दूर करना चाहता है। मेरे मित्रों, आज आप निर्णय लें और परमेश्वर से सहायता मांगे और निश्चय जाने कि परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, क्योंकि वह आपकी सहायता करना चाहता है। यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही आशीष प्राप्त किया है। कृपया अगले अध्ययन को भी आप अवश्य सुने और अवश्य अपने मित्रों को भी बताएं, ताकि इस अध्ययन के द्वारा वे भी अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। तू